स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रेरक उद्बोधन पर बात कर रहे हैं।
जी,
वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा का उद्बोधन, श्रद्धा के बीजारोपण की साधना।
हाँ, बहुत गहरा विषय है ये।
बिल्कुल, ये उद्बोधन हमें नवरात्रि जैसे समय में, जिसे ऋतुओं की संधि भी कहते हैं, साधना में श्रद्धा और एकाग्रता का क्या महत्व है, ये समझाता है।
हाँ, मतलब वंदनीय माता जी का कहना साफ है कि अगर श्रद्धा का बीज नहीं बोया तो साधना वो फल नहीं देगी जो हम चाहते हैं।
सही, तो मतलब ये नहीं कि कितने घंटे बैठे या कितनी माला फेरी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बात मात्रा की नहीं, गुणवत्ता की है। मतलब श्रद्धा कितनी है, निष्ठा कितनी गहरी है, अपने ईष्ट के प्रति वो प्रेम, वो समर्पण कितना है। बिना उसके तो घंटों बैठना या कोई अनुष्ठान करना भी शायद उतना असरदार न हो। मन अगर भटक रहा है, घर परिवार की याद आ रही है।
हाँ, वो तो सबसे बड़ी बाधा है।
जी,
वंदनीय माता जी ने एकाग्रता पर कितना जोर दिया है, वो उदाहरण भी दिया था एक साधक का।
हाँ हाँ, बिल्कुल,
जिसे घर की याद सता रही थी
और माता जी ने उसे कहा कि अनुष्ठान छोड़कर घर चले जाओ।
हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे ऐसे भटके हुए मन से साधना हो ही नहीं सकती।
सही बात है, और इसी से जुड़ी है वो बात कि बाहरी चीजों पे निर्भर नहीं रहना।
बिल्कुल,
जैसे वो गंगा स्नान वाली बात कि बस डुबकी लगा ली और पाप धुल गए।
हाँ, ये सोच।
माता जी कहती हैं कि अगर मन में मैल है, अंदर से शुद्धि नहीं है, भावना नहीं है, तो बाहरी क्रिया कैसे काम करेगी। वो मछली वाला उदाहरण कितना सटीक है।
हाँ, कि मछली तो हमेशा गंगा में ही रहती है,
पर तरती तो नहीं। मतलब असली चीज अंदर का भाव है, वो श्रद्धा है।
यही यही श्रद्धा की शक्ति है। वंदनीय माता जी बार बार इसी को रेखांकित करती हैं, जैसे कबीर, मीरा, दादू, शबरी।
जी जी, ये भक्त थे, शायद पढ़े लिखे भी ना हो उस तरह से।
हाँ, औपचारिक शिक्षा शायद ना हो,
पर केवल अपनी अटूट श्रद्धा, उस विश्वास के बल पर उन्होंने ईश्वर को पा लिया। मीरा ने तो कमाल ही कर दिया, पत्थर की मूरत में कृष्ण को देख लिया
और विष का प्याला भी अमृत हो गया उनके लिए।
हाँ, और शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए। ये क्या था, ये भक्त की भावना का, उसकी श्रद्धा का सम्मान था।
अद्भुत।
रामकृष्ण परमहंस का भी उदाहरण है, पत्थर में से माँ काली को प्रकट कर दिया। और स्वामी विवेकानंद।
हाँ, विवेकानंद जी का तो जीवन ही बदल गया।
वो तो नौकरी मांगने गए थे, पर माँ काली के विराट स्वरूप के दर्शन हुए और सब भूल गए, गुरु कार्य में लग गए। ये सब क्या है, श्रद्धा की ही तो शक्ति है।
यहाँ एक और बहुत गहरा विचार आता है, आत्मा की भूख का। वंदनीय माता जी कहती हैं कि मनुष्य का जीवन सिर्फ सजने सवरने, बच्चे पैदा करने, मतलब इन चीजों के लिए ही नहीं है।
हाँ, ये तो बाहरी चीजें हैं।
एक गहरी भूख हमारी आत्मा की भी है, परमात्मा से मिलने की। वो कहती हैं कि जो इस भीतरी पुकार को सुनता है, वही असल में ऊंचा उठता है।
और रास्ता क्या है ईश्वर तक पहुंचने का, सच्चा प्रेम और संवेदना, दूसरों का दर्द समझना।
हाँ,
मथुरा की उस पिसनहारी नारी का उदाहरण कितना मार्मिक है। एक अकेली बाल विधवा, चक्की पीस कर जो कमाती थी
जी,
उससे उसने मीठे पानी का कुआं खुदवाया पूरे समाज के लिए, ऐसी जगह जहां बाकी सब पानी खारा था। ये क्या था, ये समाज के प्रति, ईश्वर की सृष्टि के प्रति उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा थी।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम ईश्वर से मांगते क्या हैं। क्या सिर्फ अपने लिए, नौकरी, संतान, सुख?
हाँ, ज्यादातर तो यही होता है।
या फिर पूरी मानवता के भले के लिए भी कुछ सोचते हैं। वंदनीय माता जी ने भगीरथ का उदाहरण दिया।
हाँ, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए तप करके गंगा को धरती पर उतारा।
या परशुराम का, जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग समाज के नव निर्माण रचनात्मक कार्यों में किया।
जी, और उन्होंने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भी जिक्र किया, कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन रचनात्मक कार्यों में लगा दिया।
हाँ, और लाखों लोगों को प्रेरणा दी।
बिल्कुल, गुरुदेव ने तो स्त्रियों का गायत्री अधिकार जैसी पुस्तक भी लिखी। कितना सामाजिक विरोध झेला होगा उस समय।
सही बात है,
क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर के नियम सबके लिए समान है, पुरुष हो या नारी।
और सच्ची तीर्थ यात्रा का क्या मतलब है, क्या सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाना?
नहीं, वंदनीय माता जी कहती हैं ये तब तक सार्थक नहीं जब तक हम उन स्थानों से जुड़े शिक्षण को नहीं अपनाते, जैसे तपस्या, सेवा, पवित्रता।
हाँ, मतलब वहाँ की जो स्पिरिट है उसे जीवन में उतारना।
जी, सिर्फ जाकर रस्म निभाना या जिंदगी फैलाना वो दर्शन नहीं है। दर्शन तो एक जीवन दृष्टि है।
अच्छा,
उन्होंने अपना अनुभव भी बताया भागीरथ शिला का, जहाँ गुरुजी ने तप किया था। वहाँ बैठकर उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई।
ओ।
और वहीं से लोक हित के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की प्रेरणा मिली। यह है सच्चा दर्शन, प्रेरणा लेकर उसे कर्म में बदलना।
तो मतलब साकार उपासना से शुरू करके निराकार तक पहुंच सकते हैं।
हाँ साकार, यानी रूप के साथ पूजा करना मन को टिकाने में, एकाग्र करने में मदद करता है। शुरू में ये आसान है, फिर धीरे धीरे निराकार तक, यानी उस परम तत्व को बिना रूप के अनुभव करने तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर के नियम जैसे कर्मफल, वो तो अटल है ही, पर सबसे जरूरी क्या है?
क्या?
विश्व मानव की सेवा के लिए तैयार रहना,
सेवा भाव।
हाँ, अंत में वंदनीय माता जी ने मनुष्य जीवन की कीमत पर बहुत जोर दिया। ये कितना अनमोल है, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया, बुद्धि दी, कितनी क्षमताएं दी है।
सही कहा, हमें इसके लिए आभारी होना चाहिए।
बिल्कुल, और दूसरों के दुख दर्द को समझकर नवनीत यानी मक्खन जैसा कोमल हृदय रखकर परमार्थ के काम करने चाहिए।
मकड़ी की तरह मोह माया में नहीं फंसना।
हाँ, वो जाला बुनती है और खुद ही फंस जाती है। हमें वैसे नहीं बनना, अपने कर्तव्य निभाने हैं, पर कमल की तरह निर्लिप्त रहना है।
तो संक्षेप में कहें तो वंदनीय माता जी का संदेश बिल्कुल साफ है, सच्ची साधना बाहरी आडंबर या कर्मकांड में नहीं है।
नहीं, वो तो अंदर की चीज है, भीतरी श्रद्धा, एकाग्रता, गहरी संवेदना और सबसे बढ़कर लोक कल्याण की भावना।
ईश्वर कहीं दूर नहीं,
हमारे अपने हृदय में ही है, बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से अपने अंदर झांकने की, और ये जो अनमोल जीवन मिला है इसे एक सार्थक दिशा देने की।
और यहीं पर एक सवाल शायद हम सबके लिए है, क्या हम अपनी रोज की प्रार्थनाओं में, अपने कामों में उस गहरी श्रद्धा और संवेदना को महसूस करते हैं जिसकी बात वंदनीय माता जी कर रही हैं?
विचार करने वाली बात है।
या कहीं हम भी अनजाने में सिर्फ बाहरी रस्मों में ही तो नहीं उलझ गए हैं?
सही।
इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।